ओम शांति। संध्या का समय, परमात्मा की याद के लिए उत्तम समय है। अभी सभी बातों से मन बुद्धि को डिटैच कर परमात्मा में लगाना सहज है। क्योंकि संध्या होते ही लोग भी दिन भर का फैलाया हुआ कारोबार समेटते हैं। गाय, भैंस, बैल, सारा दिन इधर उधर चारा चर के संध्या होते ही क्या करते हैं, मालिक के पास वापस जाने लगते हैं। पंछी भी सारा दिन चार दाना चुग कर शाम होते ही अपने घोंसले की ओर वापस जाते हैं। इस समय मन को समेट कर परमात्मा में लगाने में हमें भी मदद मिलती है। इसलिए योग अभ्यास के लिए दो उत्तम समय हैं, एक अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय परमात्मा मिलन के लिए उत्तम समय, सर्वोत्तम समय है। और दूसरा है संध्या का समय। अब वो विधि आप सीखेंगे कि हमें योग कैसे लगाना है। परमात्मा की याद में मन बुद्धि कैसे एकाग्र करने हैं। भक्ति में तो हम अनेक साधन लेकर अनेक क्रियाकांड कर मन परमात्मा में लगाने के प्रयास करते रहे, पर बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होता है, मन भटक जाता है। राजयोग की विधि क्या है? दो मूल सत्य आज सुबह आपने समझ लिए हैं। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं? और हमें योग किससे लगाना? वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा कौन है? ये दोनों सत्र किए हैं सबने, आत्मा का और परमात्मा का परिचय, ये दोनों सत्र किए सबने। अब आपको स्पष्ट है कि मैं स्वयं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। हमें योग लगाना है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से। न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है। हमें स्पष्ट है कि शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है। शरीर भी एक मटेरियल है, लेकिन मैं आत्मा अभौतिक अलौकिक ज्योति बिंदु हूं, चैतन्य शक्ति। परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर हैं। तो न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग, संबंध, कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क भौतिक साधन के माध्यम से होता है। एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम एक दूसरे टेलीफोन के माध्यम से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन, संपर्क, बातचीत कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मईम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम चेक करें कि हम अपने मन और बुद्धि कहां लगाकर बैठे हैं। हर एक अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि हम अपने मन और बुद्धि व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, धन में, साधन में, प्रवृत्ति में, व्यसन में, घटनाओं में बातों में अटैच करके बैठे हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। वास्तव में राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जैसा कि अब तक योग के नाम पर हम आसन, प्राणायाम, व्यायाम की क्रियाएं करते रहे हैं, राजयोग में ऐसी कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। हम ये सिखाते हैं कि जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन हैं, माताएं, बहने, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां आप खुद अपने आप को देखिए। आप आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे करते हैं? अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो इजी रहेगा या मुश्किल लगेगा? योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय आप और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं। अब हमारे शरीर भी ऐसे कमजोर रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि सुखासन में बैठे, जिस सहज स्थिति में आराम से आप बैठ सकते हैं उस सहज स्थिति में बैठिए। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। लेकिन फिजिकली रिलैक्स पर मेंटली अटेंटिव होकर बैठना, मन से अलर्ट होके बैठना, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए, प्रभु चिंतन के लिए बैठी। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी, इस अटेंशन से बैठिए। आप में से हो सकता है आजकल फिजिकल योग सब सीख रहे हैं, हो सकता है कोई आप में से पद्मासन लगाकर अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा आधा घंटा दो घंटा बैठ भी सकते होंगे, लेकिन शरीर से आसन लगाकर आप स्थिर बैठ गए। मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर आप बैठ गए तो क्या फायदा है। हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में मग्न करना है, मन बुद्धि परमात्मा में आसन्न स्थित करना है, न कि केवल बाह्य शरीर से स्थिर होना है। इसलिए परमात्मा जो इस योग का आदि शिक्षक है, वो हम आत्माओं को यही समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है, मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही, अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन बुद्धि परमात्मा में मग्न करने की। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। दूसरी बात, भाई बहने सोचते हैं योग में हमें क्या करना है। परमात्मा मिलन के लिए भक्ति में तो हम माला फेरते थे, कोई मंत्र रटते थे, कोई मुख से आरती भजन गाते थे। राजयोग में हमें क्या करना है। राजयोग में न रटना है, न जपना है, न ही इसमें कोई मुख से आवाज करना है, क्योंकि रटना जपना नेचुरल नहीं है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? रटते हैं नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, हम सिर्फ नाम रटते नहीं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, अभ्यास हो जाने के बाद वो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती, मैकेनिकल हो जाती है। फिर आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा, मंत्र रटते रहेंगे और मन भटकता रहेगा, क्योंकि जो क्रियाएं यांत्रिक है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता। इसलिए इवन ज्ञानी भक्तों ने भी स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद ये सजेस्ट किया है कि के हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। ये हाथ से माला के मण के फेरने की बात नहीं है, मन रूपी मण के को फेरना है, अर्थात मनोस्थिति चेंज करनी। आज हमारा मन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, हम अपने आप को देह समझते रहे, देहभान में रहे, तो मन बहिर्मुखी बन गया। हमारा मन संसाराभिमुख बन गया, इसलिए वही बातें हम सोचते रहते। हमें मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भिमुख करना है। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, न कि माला फेरने की बात। इसलिए प्रथम अभ्यास, प्रथम लेसन में आपको कौन सा सिखाया गया? आत्मचिंतन, स्वचिंतन। और जब हम अपने आंतरिक आत्म स्वरूप के बारे में सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिक मन अंतर्मुखी बनता है, समेटने लगता है। तो मनोस्थिति अंतर्मुखी बनाना है, ना ही इसमें कोई मंत्र रटना है। भक्ति में हम कोई ना कोई मंत्र लेकर रटते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम मंत्र रटते हैं, हम उसके अर्थ को भी नहीं समझते हैं। ब्राह्मण श्लोक बोलते रहते हैं, कई क्रियाकांड में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। अर्थ कितने लोग समझते हैं? जब अर्थ नहीं समझते हैं, हम अभ्यास में क्या लाएंगे, आचरण में क्या लाएंगे, अनुभव क्या करेंगे? इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। जैसे हम भक्ति में रटते हैं, श्री कृष्ण शरणम ममा, हम मुख से रटते हैं, धुन की तरह बोलते हैं, अब हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अब ये बार बार रिपीट करना है या प्रैक्टिकल उनकी शरण में जाना है? अगर हम परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं तो हम उनकी शरण में ही है ना। और मुझे ईश्वर की शरण में जाना है तो बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा के ज्ञान को, गुणों को, उनकी श्रीमत को मैं फॉलो करूं तो मैं उनकी शरण में ही हूं। इसलिए योग में कोई शिव बाबा ऐसा रटना नहीं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये कोई बोलने की प्रथा की बात नहीं, कहने की बात नहीं, कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं, हमें ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा बनना है, हमें अपनी मनोस्थिति शांत बनानी, न कि सिर्फ शब्द रिपीट करना है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को आचरण में लाना है। सबसे उत्तम ये है कि जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध है उसे और कोई शब्द मंत्र की जरूरत नहीं, और ना ही हमें इसमें मुख से कुछ भी गाना बजाना आवाज नहीं करना। भक्ति में हम मुख से गाते हैं, आवाज करते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से रात रात हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कितना आवाज करते हैं। और सत्यता क्या है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। सत्य तो ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता, परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहे। ये टॉकी वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज में आते हैं, वो साइलेंस वर्ल्ड है, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है, कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज पहुंचता है, अंतर्मुखी मन का आवाज पहुंचता है। परमात्मा को दिल का सच्चा प्यार पहुंचता है। इसलिए योग अभ्यास के समय हम साइलेंस में बैठते हैं, आत्मचिंतन कर अंतर्मुखी बनते हैं, सोल कॉन्शियस बनते हैं, फिर मन ही मन प्यार से उस पिता को याद करते हैं। तो हमें इसमें कोई आवाज नहीं करना। इस दृष्टि से देखा जाए राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं है। तीसरी बात, लोग सोचते हैं योग किससे लगा, हम सामने क्या रखें? भक्ति में तो हम मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, हम दीवा जलाते हैं, बिंदु पर मन लगाते हैं। राजयोग में हमें किससे योग लगाना है, हम सामने क्या रखें? अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, अब आप सभी सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है। अब आप सभी भी ज्ञानी आत्मा है। आपने अपने आप का सही परिचय प्राप्त किया है, किया है ना? पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त किया है। अब आप ज्ञानी आत्माएं हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमें योग किससे लगाना है? हमें योग किससे लगाना है? हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना, न कि परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से या फोटो से योग नहीं लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे। बेशक हम परमात्मा को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। सहमत है इस बात से? हम मानते थे पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हरेक ने अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट के फोटो चित्र मूर्ति मंदिर बना दी। अब जबकि हमें परमात्मा का सही परिचय मिला है, तो हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगा। अच्छा, हम अपने स्नेहियों को, प्रेमियों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो, चित्र हो तो मन लगे, ऐसा है क्या? नहीं। हम कहते हैं कि मुझे उनके बाह्य चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, मुझे उनके बाह्य फोटो की जरूरत नहीं। परमात्मा की याद के लिए हम कब तक साधनों का आधार लेंगे, जबकि अनुभव है, भक्ति में अनुभव है, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े रहते और मन में दूसरी ही मूरतें घूम रही है। हम इन साधनों का आधार लेते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? मन भटकता ही रहा है, क्योंकि मूल चीज परमात्मा के सही परिचय को जानते ही नहीं थे। इसलिए अब एक कदम आगे बढ़ना है। परमात्मा को याद करने का जो अभ्यास चित्र, मूर्ति, फोटो, माला, साधन का आधार लेकर करते थे, अब परमात्मा को याद करने का अभ्यास मन और बुद्धि से करना है। जो अभ्यास क्रियाओं से करते थे, रटना, जपना, गाना, क्रियाओं से जो अभ्यास करते थे, अब वो अभ्यास ज्ञान बल से समझ पूर्वक हमें करना है। इसलिए राजयोग में कोई भी चित्र, मूर्ति, फोटो का आधार लेने की बात नहीं है। और परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना, इन चर्म चक्षुओं से तो हम भौतिक चीजें देखते हैं, परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से देखने की बात ही नहीं है ना, वो तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, आप सूर्य चंद्र नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य चंद्र शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, मन की आंख से देखा ना, बुद्धि से विजुअलाइज किया ना? कैसे विजुअलाइज हुआ, क्यों विजुअलाइज हुआ, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में चंद्र के बारे में ज्ञान है, तो मन की आंख से विजुअलाइज किया। परमात्मा तो इन आंखों से देखने की चीज ही नहीं, परमात्मा को जानना है, समझना है, कोई देखने की चीज नहीं। इसलिए हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन और बुद्धि से परमधाम निवासी परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखते हैं, और बुद्धि से समझ पूर्वक हम उस पिता को याद करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। इसलिए यहां जो भी चित्र आप देख रहे हैं, यहां आर्ट गैलरी में ज्ञान के अनेक चित्र हैं, आप जिन भी सेवा केंद्रों के माध्यम से यहां आए हैं, आपने हमारे राजयोग सेंटर विजिट किए होंगे, किए हैं, हाथ ऊपर करें। हमारे हरेक सेवा केंद्र पर भी अनेकानेक ज्ञान के चित्र लगे हुए हैं, देखे हैं आपने, ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना, ये ज्ञान समझाने के लिए। ये और आप इस बात को मानेंगे, क्यों हम इतने चित्र लगाते हैं ज्ञान के, आप इस बात को मानेंगे कि हम अपने घर में जैसे चित्र लगाते हैं ऐसा ही हमारा चरित्र बनता है। घर में आप क्रिकेटर, एक्टर, मित्र संबंधियों के चित्र लगाएंगे, उठते बैठते वही देखेंगे, वही बनने की प्रेरणा लेंगे। अगर आप ज्ञान के चित्र लगाएंगे तो उठते बैठते ज्ञान की बातें बुद्धि में आएंगे। तो ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझने और समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल है वो भी समझाने के लिए, परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये समझाने के लिए हमें इस प्रतीक से योग नहीं लगाना, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना। इसलिए अगर एक ही वाक्य में राजयोग की व्याख्या करूं तो परमात्मा जो है, जैसे हैं, जहां रहते हैं वहां मन बुद्धि लगाना, उससे योग कहते हैं, उससे योग कहते हैं। परमात्मा जो है क्या है? परमात्मा हमारे लिए क्या है? परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, सदा पावन है, ऑलमाइटी है। सारी महिमा आप जानते हैं, जानते हैं। परमात्मा जो है और जैसे हैं, कैसे हैं? ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसी मैं स्वयं आत्मा हूं और जहां रहते हैं, कहां रहते हैं? परम धाम में, उसे याद करना है, उसे योग कहते। योग कोई मुश्किल चीज नहीं है, अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपनी अपनी भावना से भगवान को याद करना भक्ति कहा जाता है, जो हम करते रहे। अब परमात्मा जो है, जैसे हैं, जहां रहते हैं, यथार्थ रूप से जान पहचान कर उससे याद करना योग कहा जाता है। राजयोग बहुत सहज योग है, हर कोई योगी बन सकता है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग, घर गृहस्थ में रहते हुए हमें अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। जब हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश भाई बहनों को देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग क्या सोचते, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमारे पर अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम संबंधों में बंधे हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में रॉन्ग कंसेप्ट है, गलत मान्यता है। लोग ये मानते हैं कि योगी बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़े, दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं तो मन परमात्मा में लग सकते हैं। क्यों ऐसी मान्यता है? क्योंकि अब तक जो भी योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, संन्यास लेकर हुए, तो गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं हम योगी कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है? सत्य सत्य क्या है। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी, हमें संबंध, जिम्मेवारियां, परिवार, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी। हमें क्या छोड़ना है? देहभान छोड़ना है। देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, तो मन, दुनिया, संबंध, व्यक्ति, पदार्थ, प्रवृत्ति से ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है, इसलिए देहभान मिटाना है। और देहभान मिटाने का सिंपल अभ्यास है, कौन सा है? खुद को आत्मा समझना है। सिंपल मेथड है, कोई देह दमन नहीं करना है, कोई इंद्रियों को कष्ट नहीं देना, हमें खुद को आत्मा समझना है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलनी है। कई लोग हमें कहते हैं कि बहन जी, हम भी यहां रह जाएं, योगी बनने के लिए यहां रहने की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान और योग के अभ्यास को साथ ले जाने की जरूरत है। तो जहां आप रहते हैं, वहां रहते भी योगी बन सकते हैं। स्थान नहीं बदलना है, आत्मा स्थिति बदलनी है, मेंटल पोजीशनिंग बदलनी है। हमें ड्रेस बदलने की जरूरत नहीं है, कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या सफेद ड्रेस पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। कोई बाह्य ड्रेस नहीं बदलना है, आंतरिक वृत्ति स्मृति बदलनी है, हमें आंतरिक परिवर्तन करना है। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है, नथिंग एल्स, ये यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय का, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना यूनिफॉर्म होता है। ये हमारा इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते। पर केवल सफेद ड्रेस पहन लेने से योगी नहीं बन जाते। बेशक योगी आत्मा को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। तो स्थान नहीं बदलना है, आत्मस्थिति बदलनी है, कोई बाह्य ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, मनोस्थिति बदलनी है। इस प्रकार राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ भक्ति में हम क्या करते हैं? नियम से पूजा पाठ, धूप दीप, भजन कीर्तन करके हम खुश हो जाते हैं। वंदन गायन पूजन नमन दर्शन करके व्यक्ति खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूं, पर उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं। राजयोग में लक्ष्य है कि हमें स्वयं पुजारी से पूज्य बनना है, हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनना, केवल बाह्याचार कर खुश होना नहीं। योग में परमात्मा को याद करने में, उसमें भी वैरायटी है। आप देखिए, भक्ति में कोई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, ओ गॉड, हे भगवान, चिल्लाते हैं। हमें योग में चिल्लाना नहीं है, परमात्मा को पुकारना नहीं। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। आरती शब्द ओरिजिनली आर्त वाणी है, अंतर की वाणी से याद करना है। मन ही मन परमात्मा को याद नहीं कर सके तो हम मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे। हमें आवाज नहीं करना है, चिल्लाना नहीं, पुकारना नहीं। कहीं कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वास्तव में वे क्या करते रहते हैं? परमात्मा से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम मांगते रहते, इसलिए परमात्मा कहते हैं अब कि तुम याद नहीं करते थे, तुम तो फरियाद ही करते रहते थे। हमें परमात्मा से मांगना नहीं है, राजयोग में हम मांगते नहीं। क्यों नहीं मांगना है? किस आधार पर? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे। गाते हो ना, हरेक गाते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, गॉड फादर कहते हैं। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, त्वमेव माताश्च पिता तुम। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम वारिस हैं। परमात्मा से प्राप्त करना हमारा बर्थ राइट है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें परमात्मा के लायक बच्चे बनने की जरूरत। लायक बच्चे को माता पिता स्वतः ही देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? लायक बच्चे को मां बाप खुद ही सब कुछ देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, नहीं भोगते हैं, बच्चों को देते हैं। हमें लायक बच्चा बनना है, योग्य ईश्वरीय संतान बनना है। परमात्मा के लिए हम गाते हैं त्वमेव माता शिपिता त्वमेव, पर क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? है? हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं? खुद को रियलाइज कर रहा है तो हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य नहीं रहे हैं। हमें योग्य बनना है। योगी बनना माना नया कुछ नहीं करना है, योग्य बनना है, भगवान के बच्चे कहलाने लायक बनना है। तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, उनकी याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही सामर्थ्य आती है, मांगने की जरूरत ही नहीं। कई परमात्मा को प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, बड़े दीनहीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, इतनी शक्ति देना, ये कर देना। राजयोग में हम परमात्मा को प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते। परमात्मा स्वयं ही दाता है, वो है ही दाता। क्या महिमा गाते हो? शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता, वो है ही दाता, वो दे ही रहा है। जो दे ही रहा हो उसे बार बार कहना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है। ऑलरेडी दे ही रहा है ना, मुझे सोचने की जरूरत है, स्वदर्शन करने की जरूरत है, मुझे आत्मा खोज करने की जरूरत है कि परमात्मा दाता है, सागर है, भंडार है, दयालु है, कृपालु है, वो दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? खुद में खोजिए ना, क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं। योग मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई संपर्क नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करते हैं। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं। जब लाइट नहीं आती है तो पहले क्या चेक करते हो? कि कनेक्शन तो है ना, ऑफ तो नहीं हो गया। अपने आप में देखिए, परमात्मा लाइट हाउस है, माइट हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, पर मन और बुद्धि की तारें कहां जोड़ी है, अपने आप में देखिए ना। हमने अपनी आंतरिक मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारें कहां अटैच करके रखी। हम तो व्यक्ति में, वस्तु में, धन में, साधन में, आदतों में, व्यसनों में, हम तो वहां अटैच है। और फिर हम परमात्मा से मांगते रहते हैं। मन और बुद्धि की तारे परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उससे योग कहते हैं। उससे योग कहते हैं। जैसी याद वैसी अनुभूति होती है, होती है कि नहीं होती। कोई सुख के प्रसंग को याद करो, अभी वो प्रसंग नहीं है, पर वो सुख के प्रसंग को अभी याद करो तो खुशी होती है। स्मृति से अनुभूति होती है। हमें परमात्मा के मनन चिंतन में रहे, मन बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़नी। हम तो शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में लगे हुए हैं। अपने चिंतन को चेक करिए ना। अक्सर कौन सी बातें आप सोचते रहते हैं, कौन सी बातें सोचते रहते हैं, कौन से विचार आपको बार बार आते, वही नौकरी, धंधा, घर, कारोबार, समाज, संसार, परिवार, वही बातें सोचते रहते हो। हमने मन बुद्धि वहां लगा के रखे, वही बातें हम सोचते रहते। अब हमें मन बुद्धि परमात्मा से लगाना है, उनके मनन चिंतन में रहना है, उसे योग कहते हैं। योग मीन्स रिलेशन, संबंध जोड़ना। प्राप्ति संबंध से होती है। एक बच्चे को शारीरिक मां बाप नेचुरली याद आते हैं, उसे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संबंध है। आप यहां आए हैं, आपको कौन याद आते हैं? दुनिया में लाखों लोग हैं, सबकी याद आपको आती है? नहीं। आपको कौन याद आते हैं, जिससे आप रिलेटेड है, कनेक्टेड है, जिसके साथ आप रोज उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वही तो याद आते हैं। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी मेथड क्या हुई? उसकी मेथड क्या हुई? भगवान से संबंध जोड़ो। सिर्फ परमात्मा को मानो नहीं, यथार्थ रूप से जानो। अब आपने जान लिया, एक कदम आगे है आप। अब एक और कदम आगे बढ़ना है कि हमें सिर्फ 3 दिन के लिए जानना नहीं है, हमें उनसे संबंध जोड़ना है, उसे अपना बनाना। परमात्मा के साथ हमारे संबंध हैं, है कि नहीं है? कौन सा श्लोक बोलते हो? कौन कौन से संबंध है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सर्व संबंध है, वो हमारा सब कुछ है। माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। गायन तो करते रहे हैं, राजयोग में हम ये कहते हैं कि परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध है उसका हमें सिर्फ गायन नहीं करना है, सिर्फ वर्णन नहीं करना है, हमें उन संबंधों को निभाना है, फॉलो करना है। आप खुद बताइए, क्या आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या, तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो, ऐसे गाते हैं क्या? बच्चे को निश्चय है, परख है, यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारियों में एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान कर उनके पास पहुंच जाता है। हमें परख है, निश्चय है, यही मेरे माता पिता है। हमें निश्चय हो परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माँ बाप है, अविनाशी माँ बाप है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये शरीर के माँ बाप भाई बहन मित्र संबंधी हैं और ये एक जन्म के लिए, ये शरीर छूटेगा ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, ये एक जन्म के हैं, ये देह संबंध है। हम आत्माओं के असली अविनाशी संबंध परमात्मा से, जब हम ये निश्चय करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, तो मुझे हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में, हर क्षण, हर स्थान, हर बात में मुझे कौन याद आएगा, कौन याद आएगा? वो ही तो याद आएगा, क्योंकि मुझे स्पष्ट है कि वो ही मेरा सब कुछ है। तो परमात्मा के याद की सिंपल विधि है, भगवान से संबंध जोड़ो, उनको अपना बनाओ। God is my father, परमात्मा मेरा पिता है, मुझ आत्मा का पिता है। तो ऑटोमेटिक याद आती है, कोई मेहनत की बात ही नहीं है। हरेक को जीवन में अनुभव है, संबंध बदलते हैं, स्मृति बदलती है, स्नेह भी बदलता है। एक छोटे बच्चे को माँ ही याद आती है, क्योंकि अभी माँ ही उनके सब कुछ है। पर वही बच्चा बड़ा होता है और बाल बच्चों से मित्रता होती है, अब क्या होता है, माँ की याद कम हो जाती है, उससे बार बार बाल मित्रों के साथ खेलने जाने का मन करता है। अब उसका प्यार याद मित्रों तरफ चली गई। वही बच्चा युवा बनता है, शादी करता है, अब मित्रों की याद कम हो जाती है, पत्नी की याद ज्यादा आती है। बेटा होता है, अब दोनों का ध्यान बच्चे के तरफ है, दोनों को बच्चे का केयर अटेंशन ज्यादा रहता है। तो जीवन में अनुभव है ना, संबंध बदलते हैं, याद भी बदलती है, प्यार भी बदलता है। तो योग में नया कुछ भी नहीं करना है, खुद को देह समझकर देह संबंधों को याद करते थे, अब खुद को आत्मा समझकर आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा को याद करना है। इसलिए योग मीन्स मिलन, जोड़, कनेक्शन, संबंध, रिलेशन। योग लगाना माना परमात्मा को याद करना, स्मृति, रिमेम्बरेंस, परमात्मा को प्यार करना, उनका बन जाना, उसे योग कहते हैं। इसलिए परमात्मा की याद में एकाग्रता का आधार है प्यार। जितना परमात्मा के लिए प्यार, उतनी सहज एकाग्रता आती है। याद का आधार प्यार है। जीवन में संबंध अनेकों से हैं, पर हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? संबंधी तो अनेक अनेक है, मित्र तो अनेक अनेक है, पर इन अनेकों में मुझे बहुत जिगरी किसकी याद आती है? जिससे दिल का सच्चा प्यार है, वो जिगरी प्यार माँ बाप से है तो माँ बाप याद आएंगे, वरना नहीं। वो सच्चा प्यार मित्र से है तो मित्र याद आएगा। प्यार हमारा परमात्मा से जिगरी प्यार तो याद करना नहीं पड़ता है। याद सिर्फ आती नहीं है, हमें उनकी याद सताती है। हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए अगर मुझे परमात्मा याद से प्राप्ति की अनुभूति नहीं है, मीन्स मेरी उनसे प्रीत बुद्धि नहीं है। बाहर जोर से बारिश हो रही हो, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा हो तो भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा ना। समझ गए ना प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? हाँ, लोटा ही उल्टा है, बुद्धि ही विपरीत है, हमारी परमात्मा से प्रीत ही नहीं है। चेक करो अपने आप को, चेक करो। परमात्मा को हम याद करते हैं, पर कैसे याद करते हैं? कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। ये हमारा नियम है, सुबह शाम धूप दीप आरती भजन कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, कि हमारा पक्का नियम है। कई तो कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम भी करते हैं। मेरी सास करती थी मैं भी करती हूं, पर न सही ज्ञान है न परमात्मा से प्यार है, सिर्फ रसम कर लेते हैं, क्रियाकांड कर लेते हैं, नियम है बस, मोनोटोनस। कोई परमात्मा को याद करते हैं सिर्फ मतलब से याद करते है कि नहीं ऐसा, मतलब से याद करते, हमें उनसे कुछ चाहिए इसलिए याद करते, स्वार्थ से याद करते। अगर हमें जो चाहिए वो उनसे ना मिलता हो तो शायद हम उनको याद भी न करें, स्वार्थ से याद करते, कोई भय से भगवान को याद करते, भय से मुझे कुछ हो न जाए, भय है मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, मेरे पाप फूट न जाए, इसलिए भगवान को मनाते रहते, भय से भगवान को याद करते, प्यार से कहां याद करते, प्यार से याद करना है तो हम सहज मगन हो जाते हैं। तो एक ही शब्द में कहें, राजयोग की विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा की याद में एकाग्रता का आधार प्यार है। राजयोग बहुत सहज योग है, इजी एंड नेचुरल, कोई मेहनत की बात नहीं। इस योग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान योग है, समझना है और अभ्यास में लाना है। सत्य समझने के बाद एकाग्रता के लिए प्यार चाहिए, परमात्मा के लिए प्यार चाहिए, ये प्रेम योग है। हम कर्म करते भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, कर्म योग। एक ही योग में सभी योग समाए हुए हैं, ये अपने आप में संपूर्ण योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है, इसलिए योगों का राजा राजयोग कहा जाता है। और ये इतना इजी है, नेचुरल है। लास्ट बात यही आपको बतानी है कि योग अभ्यास के समय आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, इतनी भी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करते समय हम आंख बंद करके बैठते हैं, लोग मानते हैं, ये सोचते हैं आंखें खुली होंगी हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं। हमने देखा स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, जबरदस्ती आंख बंद करवाते हैं। इवन लोग कहते हैं, मंदिर जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करने जाते हैं, हमने देखा वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग है, हम ये मानते हैं कि आंख खुली रहेगी सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? हाँ, भटकता है। आंखें खुली हैं, ये चार दीवार के बीच में जो कुछ है वो दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है, जिंदे मरे सब दिखाई देते हैं। फिजिकल आई की लिमिट है, मन की आंख की कोई लिमिट है? वो तो सेकंड में कहां का कहां जाता है। इसलिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, मन फोकस करने की जरूरत है। हमें मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करनी है। तो ये आंखें खुली हो, हजारों सामने बैठे हो, तो भी कोई याद नहीं आएगा, क्योंकि मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस है। और ये अनुभव आपको भी है, जब कोई याद में, विचार में, प्यार में, अनुभव में आप मग्न होते हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर आप पूछेंगे कि फलाना यहां से गया, आप यहां खड़े हैं ना, तो क्या कहते हैं? सॉरी, मैं तो अपने ही विचार में था, मुझे पता नहीं है कौन गया। हम अपने चिंतन में खोए हुए हैं, कोई कुछ कहता है, हम कहते हैं सॉरी मैंने सुना नहीं, फिर से आप बताइए। हमें वो ही दिखाई देता है, हमें वो ही सुनाई देता है जहां मन बुद्धि फोकस है। तो आंख बंद खोल की बात नहीं है, मन एकाग्र करने की बात है। इसलिए योग अभ्यास के समय हम आंखें नेचुरल खुली रखते हैं। और एक सिंपल लॉजिक, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती हैं या बंद रहती है? खुली रहती है ना, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है ना। बंद तो कब होती है? जब नींद आती है, इंसान थका हुआ है, नींद आती है तो आंखें बंद होने लगती। देखो आसपास, कोई आंख बंद करके तो नहीं बैठा है। हम कहते हैं नींद मेरी पूरी हो गई, आंख खुल गई। आंखें नेचुरल खुली रहती है, बंद करना नेचुरल है। और हम कितना समय बंद करेंगे? इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दे, मन बुद्धि परमात्मा में मग्न कर। ये है राजयोग की विधि, मैं समझती हूं अब आपको स्पष्ट है प्रैक्टिकली योग कैसे करना है। क्लियर है? तो आज का अभ्यास हम विधि पूर्वक करेंगे। अभ्यास और ज्ञान का क्वालिटी इनपुट, जितना मन में ज्ञान भरता जाएगा चिंतन में आता जाएगा ज्ञान। इसलिए रोज ज्ञान ग्रीत डालना है आत्मा रूपी दीपक में, तो स्मृति की ज्योत जगी रहेगी। जो मन में बातें भरते हैं वो ही तो चिंतन में आती है कि नहीं। ज्ञान की बात भरो, परमात्मा ज्ञान की बात भरो, वो ही चिंतन में आएगी। अभ्यास और सत्य ज्ञान जरूरी है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेके न बैठे। कमर सीधी रखकर बैठे। भले आप कुर्सी सोफा के बैक का आधार लें, पर स्ट्रेट बैठे। एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। मैं शिव बाबा की याद में स्थित रहूंगी। मुझे देख आप भी मन ही मन शिव बाबा को याद करेंगे। हमेशा कोई योग अभ्यास कराने बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे हर योग रूम में, मेडिटेशन हॉल में ब्रह्मा बाबा का चित्र है, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, हमें शिव बाबा को याद करना है। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएं। ये आपके नए नए अभ्यास है। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन शिव बाबा को कैसे याद करना है, मैं सजेशंस देती जाऊंगी। आपको मुख से, आवाज से रिपीट नहीं करना है, लेकिन जो विचार में दूं वो मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, अनुभव करना है। आत्म स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा, मेरा असली घर शांति धाम है। भल मैं शरीर से इस दुनिया में बैठी हूं, मन बुद्धि से असली घर शांति धाम में जाती हूं। जहाँ प्यारे पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु परमात्मा पिता को देख रहे हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, आपके सत्य ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मेरे मन का अज्ञान अंधकार समाप्त हो रहा है। मुझे स्पष्ट है मैं कौन हूँ और आप कौन है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। मेरी प्यारी शिव पिता अब मेरा ये ही लक्ष्य है। जो ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर है, जिन शक्तियों के आप अखूट भंडार है, मुझे भी आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को आपके सर्व सत्य गुणों को आपकी सभी रूहानी शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। मेरी मीठे शिव बाबा, आप शांति के सागर शांति दाता है। आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत आत्मा। मुझे स्वयं शांत रहना है, सर्वत्र शांति फैलानी है। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैं आपको याद करती हूँ, आपके साथ का अनुभव मुझे शक्तिशाली बनाता है। मैं शिव की शक्ति, कल्याणकारी शक्ति हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, आपकी याद से मैं आत्मा पावन बनती जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपकी प्रभु संतान हूँ। मैं शांत हूँ, मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। ओ